दिन भर 18 सितंबर बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी पूरी।
ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हर पार्टी इसको पूरा वक्त मिलना चाहिए और मिलेगा, मुझे यकीन है अपनी बात को रखने का। इसके बाद तो कोई कोर्ट ही है ही नहीं।
सुनिएगा कश्मीर में ज्यादा मतदान के लिए मशहूर उड़ी जिले के लोगों को।
फौज बाहर नहीं निकलने देती है, निकालो पास, ये निकालो, फलां निकालो, क्या हम पाकिस्तानी हैं? ये तो सोच।
और अफगान शांति वार्ता रद्द होने का क्या होगा असर?
इसका मतलब ये है कि जंग में इजाफा होगा, ज्यादा खून बहेगा और फिर ऐसे हालात साजगार नहीं होंगे बातचीत के लिए।
सुनिएगा दुनिया जहान, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि अयोध्या विवाद की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद में जमीन के मालिकाना हक पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। संवैधानिक बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस सुनवाई के साथ साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया भी चलती रह सकती है और अगर इससे समझौता हो जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं और उन्हें इससे पहले फैसला देना होगा क्योंकि इस मामले पर उन्होंने शुरुआत से सभी दलीलें सुनी हैं। इसराइल में मंगलवार को हुए आम चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स में मौजूदा प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स के बीच मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। करीब 90% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। लाइबेरिया के कोरानिक स्कूल में आग लगने से कम 27 बच्चों की मौत हो गई है। राजधानी मोनरोविया के उपनगर पेंसविले की एक मस्जिद से लगे बोर्डिंग में रात के वक्त एक भीषण धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि सिर्फ 2 बच्चे और उनके शिक्षक ही इस भीषण आग से बचकर भाग सके। राष्ट्रपति जॉर्ज वे ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि ये पीड़ित परिवारों के लिए बेहद दुख की घड़ी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने यूरोपीय संसद में कहा है कि ब्रेग्जिट को लेकर हुई वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लंदन ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ कभी नहीं चाहता है कि बिना समझौते वाला ब्रेग्जिट हो। यूरोपीय संघ की ओर से वार्ताकार मिशेल बार्निये ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भी सभी विवादास्पद मुद्दे बने रहेंगे और जब तक ब्रिटेन यूरोपीय संघ से नया व्यापार समझौता नहीं कर लेता हर मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। अगर ब्रिटेन बिना समझौते के अलग होता है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सवाल अपने आप खत्म नहीं हो जाते। अगर कोई समझौता नहीं होता है तो वे सभी सवाल तब भी मौजूद रहेंगे, चाहे ये नागरिक अधिकारों की बात हो, आयरलैंड में शांति की बात हो, आयरलैंड में घरेलू बाजार को बचाने की बात हो या फिर बजट की बात हो। ये सब ब्रिटेन के साथ भविष्य के रिश्ते तय होने से पहले निश्चित करना होगा। ये थे मिशेल बार्निये के शब्द। ब्रिटेन में सऊदी अरब के नए राजदूत ने कहा है कि शनिवार को उसके तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के खिलाफ जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बीबीसी से बात करते हुए प्रिंस खालिद बिन बंदर अल सऊद ने कहा कि ये हमला पूरी दुनिया और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है और इसमें ईरान का हाथ है, इस बात पर उन्हें कोई शक नहीं। लगभग ये निश्चित है कि हमें इसमें ईरान का हाथ है। हम जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते क्योंकि हम इस इलाके में संघर्ष नहीं चाहते। ये पूरे इलाके के मुकाबले बहुत ज्यादा तेल उत्पादन करता है, इसलिए ये पूरी दुनिया और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए झटका है, न कि सिर्फ सऊदी अरब के लिए। ये थे प्रिंस खालिद बिन बंदर अल सऊद के शब्द। अमरीकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन से आग्रह किया है कि वे भारत को दी जाने वाली व्यापारिक रियायतें दोबारा बहाल कर दें। सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में जो व्यापारिक शुल्क लगाए हैं उससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल जून महीने में ट्रंप ने भारत को व्यापारिक वरीयता से ये कहते हुए हटा दिया था कि उसने अमरीकी चीजों के लिए उचित बाजार उपलब्ध नहीं कराए। सांसदों का कहना था कि दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर कई नौकरियां निर्भर करती हैं और ऐसे में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत सरकार ने ई सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब ई सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, जमा करने और यहां तक कि वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए एक अध्यादेश लाया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर अधिकतम 1 साल की सजा और 1,00,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट की एक बैठक में रेलवे के लिए 11.52 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिए जाने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस बोनस पर 2,024 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जर्मनी में महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो बाल विवाह को रोकने के लिए उनका रवैया निराश करने वाला है। इन कार्यकर्ताओं का दावा है कि बीते 2 साल में बाल विवाह के करीब 800 मामले सामने आए हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। मैं हूँ कुलदीप मिश्र। 18 अक्टूबर ये वो तारीख होगी जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दलील सुनी जाएगी। शीर्ष अदालत ने दलीलें पूरी करने की समय सीमा आज तय कर दी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अयोध्या विवाद की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसका ये मतलब नहीं है कि 18 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा। फैसला कब आएगा ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 17 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट से पहले फैसला आ सकता है। पहले सुनिए, आज सुनवाई की समय सीमा तय किए जाने के बाद AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट मजाज है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है, और जब सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहा है कि 18 अक्टूबर तक शायद पूरे पार्टीज अपनी बहस को मुकम्मल कर लेंगे, आर्गुमेंट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उनके ऊपर कब फैसला दे। ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हर पार्टीज को पूरा वक्त मिलना चाहिए और मिलेगा, मुझे यकीन है, अपनी बात को रखने का। इसके बाद तो कोई कोर्ट ही है ही नहीं, ये आखिरी कोर्ट है।
भाजपा के राम मंदिर आंदोलन के अहम नेता रहे विनय कटियार ने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब फैसले में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, फैसला आने दीजिए, पत्थर तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने क्या कहा है वो सुनिए।
यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई बेवजह लटका नहीं सके, 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जाएगी, मिड नवम्बर तक हम राम जन्मभूमि का निर्णय सुनेंगे।
अयोध्या विवाद में जमीन के मालिकाना हक पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। अदालत में आज क्या हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों पर नजर रखने वाले पत्रकार सुचित्र मोहंती से।
अदालत की कार्रवाई आज लगभग 10:30 के आसपास शुरू हुई। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता वाली पीठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब अध्यक्षता कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे। सुनवाई शुरू होते ही 10 मिनट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने यह कहा कि इतने सारे पक्षकार है, रेस्पोंडेंट है, सब ने जितना फाइल किया है उसी हिसाब से हम ये टेंटेटिवली ये कहना चाहेंगे कि अक्टूबर 18 तारीख तक इनकी सबमिशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर अक्टूबर 18 तारीख की डेट है तो 1 महीने कुल मिला के अगर सबमिशन रहेगी, ये कह सकते हैं कि 1 महीना बचेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चारों जजेस के पास जजमेंट को लिखने के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नवंबर 18 तारीख को रिटायर्ड होंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 1 महीने में 500 जो जजेस है उनको जजमेंट लिखने के लिए टाइम मिल जाएगी। और मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया जो मीडिएशन पैनल है, मीडिएशन पैनल करता है उनके पास भी जो मीडिएशन चाहेंगे वो कर सकते हैं। यानी कि मीडिएशन के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मीडिएशन जो करना चाहेंगे इस मामले में वो कर सकते हैं। और ये भी कहा कि मीडिएशन की जो पैनल की जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल है, क्या रहेगी मीडिएशन पैनल की जो कमेटी की रिपोर्ट वो कुल मिलाकर सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे।
तो अभी जितना समय है 18 अक्टूबर तक जब आखिरी दलील इस मामले में दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तब तक क्या क्या प्रक्रिया होगी, रोज सुनवाई होती रहेगी।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है अक्टूबर 18 तारीख तक आर्गुमेंट सबमिशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर 18 तक जब भी सबमिशन चलेगी रोज की जो सुनवाई है डे टू डे हियरिंग है वो चलती रहेगी। और जिसकी तरफ से अभी चल रही है मुस्लिम साइड की तरफ से सुनवाई चल रही है, यानी कि सबमिशन चल रही है, राजीव धवन साहब सबमिशन कर रहे हैं, वो चलती रहेगी। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा अगर हिंदू साइड चाहेगी तो उनके लिए भी 1-2 दिन की समय मुकर्रर किया जाएगा, उनको भी रिप्लाई करने के लिए और दलीलें देने के लिए मौका मिल जाएगा।
और 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होगी, तो इस पर फैसला कब तक आ सकता है, क्या आज की तारीख में कोई हम अनुमान लगा सकते हैं?
देखिए, नवंबर 17 तारीख से पहले जरूर आएगी, क्योंकि नवंबर 17 जो है संडे है, रविवार है, छुट्टी का दिन होती है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब रिटायर करेंगे 18 तारीख को, तो उससे पहले आएगी, यानी कि फ्राइडे तक कुल मिला के नवंबर 15 तारीख तक जजमेंट आने का पूरी उम्मीद है, सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि तो जजमेंट को लिखने में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, उसको मान के चलिए कि 10 दिन और 12 दिन 15 दिन लग सकती है, तो इसमें कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नवंबर 1 तारीख से लेकर नवंबर 15 के बीच में से जजमेंट आने की पूरी संभावना है।
जानकारी दे रहे थे सुचित्र मोहंती। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने को अब 1.5 महीना होने को है। कई जगहों पर लैंडलाइन टेलीफोन अब काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट पर पाबंदियां जारी हैं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन उनकी इस कोशिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
आज जो अलगाववादी नेता हैं सैयद अली गिलानी, कोई 1.5 महीने हो चुके हैं इस स्थिति को, तो पहली बार जो उनकी तरफ से एक निमंत्रण आया था पत्रकारों को ईमेल के जरिए, तो अब सभी लोग जब पत्रकार और चैनल के कैमरा पर्सन वहां पहुंचे, उनके घर पे, उनके निवास पे पहले से पुलिस और सीआरपीएफ की 2 गाड़ियां लगाई गई थी और अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। और उसके बाद जो सीनियर पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि अगर यहां पर ज्यादा भीड़ जमा हो गई पत्रकारों की तो उल्लंघन होगा धारा 144 का, जिसके मुताबिक 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर 1 घंटे तक उनके साथ वार्तालाप भी हुआ और उन्हें कहा गया कि पत्रकारों के पास कर्फ्यू पास है, उन्हें कम से कम अंदर जाने की इजाजत दी जाए, तो उन्होंने नहीं माना। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विफल कर दी गई। जाहिर है ये पहली बार किसी अलगाववादी नेता की तरफ से पहला प्रयास था कि वो प्रेस के साथ बात करे और अपना कोई संदेश दे दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण में तो सिर्फ 2 लाइन में लिखा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसा कोई एजेंडा जाहिर नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें जाहिर है हड़ताल जो बराबर जारी है उसके बारे में कोई लाइन ऑफ एक्शन देना था, या किस तरह से धारा 370 को हटाए जाने के बाद जो नाराजगी पाई जाती है, जो गुस्सा है, तो उसको चैनलाइज या उसको रीओरिएंट करने के लिए वो कोई डायरेक्शन देते, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों में एक डायरेक्शन लेसनेस है, क्योंकि जो भारत का समर्थन करने वाले, पक्ष करने वाले नेता हैं वो भी बंद हैं, अलगाववादी भी बंद हैं, और हड़ताल खुद से खुद हो रही है, सभी व्यापारी गतिविधियां जो है वो स्थगित हैं, और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा है, स्कूलों में छात्र छात्राएं भी नहीं है, तो इस तरह से एक डायरेक्शन लेसनेस है, उसी को देखते हुए शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है, विश्लेषकों का मानना है कि गिलानी इसी बारे में कोई डायरेक्शन देना चाहते, लेकिन इसे बहरहाल विफल कर दिया गया।
जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही बीबीसी की कई टीमें पूरे प्रदेश से खबरें हम तक पहुंचा रही हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर से लौटी बीबीसी संवाददाता शालू यादव उड़ी जिले के गांव में पहुंची और वहां उन्होंने लोगों से बात करके उनका मिजाज समझने की कोशिश की। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके उड़ी के रास्ते मैं पहुंची हूं तिलावाड़ी गांव, जो कि आखिरी गांव है लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले। यहां पर मैं देख सकती हूं मेरे सामने रेजर वायर की एक लंबी सी तार है जो पूरे पहाड़ को एक तरीके से काटते हुए ऊपर की तरफ जा रही है।
ये पाकिस्तान है सामने,
बिल्कुल सामने,
बिल्कुल यही है पाकिस्तान। ना, यही पाकिस्तान है। यही
अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी ये जहाँ हम खड़े हैं वो
हम इंडिया में हैं।
और मैं देख सकती हूँ मेरे सामने एक इंडियन आर्मी की एक पोस्ट है जहाँ पर भारत का झंडा लगा है। लेकिन जैसे ही उस पहाड़ी के पार आप देखेंगे, आपको एक दूसरा गांव दिखता है। आप डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का गांव है जिसका नाम है ख्वाजाबंद। तिलावाड़ी गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं, और ये गांव इसलिए खास है क्योंकि यहां से लोग वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जब जब चुनाव होते हैं उड़ी से, तिलावाड़ी से, बहुत से लोग हैं जो मतदान के लिए आगे आते हैं और अपना वोट डालते हैं, जो कि अपने आप में ही एक खास बात है, क्योंकि कश्मीर वैली में हमने देखा है कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में वोटिंग की परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि जब ये फैसला लिया गया 5 अगस्त को भारत प्रशासित कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने का, तब से यहाँ क्या माहौल है?
यहाँ पर दहशत जैसी फैली हुई है, खौफ है लोगों के दिलों में, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे हमें एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा सकें, तो एक किस्म का खौफ है, हैरासमेंट है लोगों के दिल में, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है।
अगर भारत सरकार चाहेगी आप किसी के पास कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा वोट मांगने के लिए, अगर वो सील होगा वो खानदान होगा। क्यों हमारे साथ धोखा किया उन लोगों ने, हमको बोला आप हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं। रक्षा क्या है, फोन भी बंद, कटाव किया और जनाब अली हर चीज की तंगी हमको दी। फौज बाहर नहीं निकलने देती है, निकालो पास, ये निकालो, फलां निकालो। क्या हम पाकिस्तानी हैं? ये तो सोचना चाहिए। अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं, 70-70, 80-80 साल हो गया हमको यहाँ पर रहते हुए, फिर भी हमको तंगी है, हमें वोट डालने का क्या क्या फायदा है?
हम भारत के आयन हिंदी में रहते हैं, 47 से लेकर आज तक 5 मिनट का रास्ता यहाँ से जाते हैं हम, पाकिस्तान गुजर जाएंगे। लेकिन आपने हिंदुस्तान में रहते रहे, ये करते 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 आज तक हम हर एक सतेज हमने सह लिया, लेकिन इस वक्त जो कानून ने बनाया ये नहीं सह सकते, हम मर चुके हैं।
फिलहाल यहाँ पर बहुत शांति है, नीचे एक नदी बह रही है, चिड़ियों के चहचहाने की हमें आवाज़ आ रही है, बहुत ही खूबसूरत वैली है यहाँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई टेंशन है। लेकिन जैसे ही दिन ढलता है और रात आती है, गांव वालों ने मुझे कहा कि यहाँ पर शेलिंग शुरू हो जाती है। तो इनका कहना है कि जब से स्पेशल स्टेटस हटाया गया तब से भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर पर टेंशन है वो बढ़ गई है और शेलिंग भी यहाँ ज़्यादा हो गई है।
उड़ी के सीमावर्ती गाँव से शालू यादव की रिपोर्ट। भारत प्रशासित कश्मीर में हालात अभी सामान्य नहीं हैं और इस वजह से श्रीनगर में पढ़ने वाले स्थानीय और बाहरी छात्रों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने प्लेसमेंट के लिए गाजियाबाद में रुके एनआईटी श्रीनगर के कुछ छात्रों से बात की बीबीसी संवाददाता आनंद प्रकाश ने, उनकी ये रिपोर्ट सुनिए कीर्ति दुबे की आवाज़ में।
अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के 40 दिन बाद भी भारत प्रशासित कश्मीर में आम जनजीवन सामान्य नहीं हुआ है। प्रशासन की ओर से स्कूल और कॉलेजों को खोले जाने की कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इसके बाद भी ज़्यादातर कॉलेज और स्कूल बंद है। ऐसे में कश्मीरी छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं श्रीनगर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले स्थानीय और बाहरी छात्र भी केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद एक और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो वहीं एनआईटी के फाइनल ईयर के छात्रों को अपने प्लेसमेंट यानी पढ़ाई के बाद नौकरी हासिल करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी ने ऐसे ही कुछ छात्रों से बात करके उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश की। इन्हीं में से एक है राजस्थान के रहने वाले छात्र अंकित। वो कहते हैं,
हमारा कॉलेज शटडाउन हो गया था क्योंकि धारा 370 जब हटाई थी तो उसके बाद से हमारे सडन नोटिस आया था कि हमें वहाँ से निकलना है, तो उसके बाद से हम निकले तो हमारे प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होना था क्योंकि हमारा फाइनल ईयर है, अगर प्लेसमेंट नहीं होगा तो फ्यूचर खराब है पूरा पूरा।
इनमें से कई छात्र सरकार के फैसले से सहमत तो नजर आते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था।
सर, अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप उठाया तो उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए था कि एनआईटी श्रीनगर में ऑलमोस्ट 5000 प्लस बच्चे हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। हमारे बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस हमें निकाल दिया कॉलेज से। सर, पहले तो हमारा फोर्थ ईयर और हमारे लिए प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बच्चा फोर्थ ईयर में आता है वो तो ये सोच के आता है ना, अब फोर्थ ईयर आया तो प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब इससे प्लेसमेंट इतनी इफेक्ट हुई है, कंपनीज आ ही नहीं पा रही हैं, इतनी लाइंड अप कंपनी थी अगस्त में। इनफैक्ट जब हमें 2 को बताया गया कि हमें 3 को घर वापस जाना है, 3 को ही हमारा कंपनी आ रहा था। एक HR भी कॉलेज में आ चुके थे और HR को हमें फिर 3 को साथ में लेकर निकलना पड़ा वापस, तो इससे काफ़ी इफेक्ट हुआ।
भारत प्रशासित कश्मीर में समय समय पर अलगाववादियों और सुरक्षा बलों के बीच होने वाली मुठभेड़ छात्रों की पढ़ाई पर असर डालती है। इस बारे में हमें जम्मू की रहने वाली हिमानी ने बताया।
2016 में जो केस हुआ था उसमें अगस्त में NIT स्टार्ट हुए थे, हमारा दिसंबर में हुआ था। बट हाँ, हम कोप अप कर लेते हैं बिकॉज हमारा सैटरडे संडे हमें ऑफ रहता था नॉर्मली, बट जब हमें ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमारा सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है, सो हम उस टाइम पे भी क्लासेस में जाते हैं। इनफैक्ट हमें दिसंबर में हॉलीडेज होती थी, लेकिन अगर पहले ये सीन हो गया था इस वजह से हमारी हॉलीडेज भी दिसंबर में नहीं थी, हम क्लासेस ही जाते थे, तो लाइक वी हैव टू डू दैट।
भारत सरकार जम्मू कश्मीर में जल्द ही स्थितियां सामान्य होने का आश्वासन दे रही है, लेकिन कश्मीर के छात्रों समेत NIT में पढ़ने वाले गैर कश्मीरी छात्रों का छात्र जीवन कब सामान्य होगा ये वक्त बताएगा।
आनंद प्रकाश की रिपोर्ट सुना रही थी कीर्ति दुबे।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
प्रधानमंत्री आवास से आई एक तस्वीर इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही है। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचक रही हैं। आज मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए।
जो मीटिंग था प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। हमें बंगाल का नाम जो चेंज करने का जो बात है, पश्चिम बंगाल का नाम ना, पश्चिम बंगाल का नाम बंगला में करने के लिए इसके बारे में हम चर्चा किया। उन्होंने इसको कुछ ना कुछ करने का वादा जरूर उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि हमारा उधर में कोल ब्लॉक ज्यादा बड़ा, एक वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक आ रहा है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि रिक्वेस्ट किया है कि आफ्टर द पूजा नवरात्रि इज ओवर एक डेट करके अगर वो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर भी आए हम भी जाएंगे एक साथ में, हम लोग इसको इनॉग्रेट करने चाहती हूँ। अगर कल टाइम मिलेगा तो हम मिनिस्टर का हम अभी जाके अपॉइंटमेंट मांगेंगे।
अगर समय मिलेगा तो अमित शाह से भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगी ममता बनर्जी। इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी बांग्ला सेवा के संवाददाता शुभज्योति। शुभज्योति, कड़वाहट कुछ कम लग रही दोनों नेताओं के बीच?
देखिए, ममता बनर्जी खुद बोला कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच मीटिंग था। उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की कि एनआरसी और बाकी सारे मुद्दे लेकर जिसके साथ उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कन्फ्लिक्ट चल रहा है या पॉलिटिकल बैटल चल रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेकर और स्टेट के मामले को लेकर उन्होंने मिला था। लेकिन जैसे बीजेपी नेताओं ने इसके मीटिंग के पहले कमेंट किया, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जैसे लीडर ने बोला, सबको पता है कि दीदी क्यों प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनको पुलिस ऑफिसर राजीव कुमार जो सीबीआई जिसको ढूंढ रहे हैं उनको बचाने के लिए वो कर रहा है, ऐसे ही उनका इंगित था, ऐसे ही उन्होंने इशारा करने की कोशिश की। तो लेकिन ममता ने आज दिखाया कि ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों गवर्नमेंट के बीच मीटिंग था। वही उनको वही मैसेज वो देना चाहती थी आज की मीटिंग
के बाद। एक तस्वीर और एक दिन पहले की हम लोगों ने देखी कि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी और ममता बनर्जी की, उसके भी कुछ अलग मायने निकाले गए।
लेकिन तृणमूल बोलना चाहते हैं, ममता की पार्टी बोलना चाहते हैं कि ये एक चांस मीटिंग था, उनको पता नहीं था, ममता बनर्जी को पता नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी की वाइफ भी उस टाइम कलकत्ता एयरपोर्ट में है, वो वेस्ट बंगाल में कोई टेम्पल में आई थी, वो लौट रही थी, चांस मीटिंग था। लेकिन
इत्तेफाक से मुलाकात
हो गया। लेकिन लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं तो क्या उनके लिए गिफ्ट भी चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद थे उस टाइम, सो इसके लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन महीना तो क्या निकलेंगे उसके बाद, वो हम श्रोताओं के ऊपर ही छोड़ देते हैं
जी। और जो मुद्दे आज ममता बनर्जी ने बताए कि इन मसलों पर बात हुई प्रधानमंत्री से, आपको लगता है कि वो इतने महत्व के थे कि उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की इसी वक्त जरूरत थी? और
एग्जैक्टली, क्योंकि जो बंगला नाम चेंज, स्टेट के नाम चेंज के बारे में जो बात हो रहे थे वो आज के नहीं, पिछले 3 साल से परे हुए हैं। स्टेट असेंबली ने वो अप्रूव करके सेंटर के पास भेजा था, उसके बाद बहुत दिन हो चुके हैं, सेंटर उसी में कोई स्टेप नहीं है। आज अचानक क्या हुआ कि ममता वो मुद्दा लेकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आए, ये सवाल तो जरूर है,
ये सवाल जरूर फिजा में है। बहुत शुक्रिया शुभज्योति। गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के एक बयान से फिर विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2013 में एनडीए सरकार बनने से पहले यूपीए के खराब प्रदर्शन ने लोगों के मन में बहुदलीय लोकतंत्र की अवधारणा में सफलता में अविश्वास पैदा कर दिया था। पहले सुनिए उनका बयान।
70 साल की आजादी के बाद देश के हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठ गया था कि क्या हमारी मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं फेल तो नहीं कर गई है? मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे गोल, हमारे लक्ष्य की सिद्धि कर पाएगी क्या? ऐसे भारत की रचना कर पाएगी क्या जो हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी?
अमित शाह क्या कहना चाह रहे थे? कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि गृह मंत्री का बयान हैरान करने वाला है और यह संघीय भारत के लिए एक झटका है। लेकिन क्या वाकई अमित शाह बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे जैसा कांग्रेस कह रही है? बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने बात की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी से।
नया मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया है ट्रायल बलून की तला, जिसपे अब आगे जाके चर्चा होगी। कई लोगों का मानना था कि दूसरी टर्म में हो सकता है भाजपा किस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए इसका जरूर उठाएंगे, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी बात हो, उन्होंने कहा हर हिंदुस्तानी के मन में होगा ये। अब वो किसी भी सिस्टम के बारे में आप कह सकते हैं, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होने वाला है, जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कोई भी इसमें दो राय नहीं रखेगा। पर इसका क्या मतलब है कि आपको सिस्टम को ही बदल देना है क्या? अब हमारे देश में जहाँ मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल और उस डाइवर्सिटी के बावजूद 70 साल से ज्यादा ये देश इकट्ठा रहा है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत रहा है, तो क्योंकि मल्टी डाइवर्सिटी है तब भी मल्टी पार्टी सिस्टम की जरूरत है।
कुछ जगहों पे लोग यही देख रहे हैं कि वन नेशन वन लैंग्वेज, तो अब वो वन पार्टी पे जो है वो
पार्टी की तरफ बढ़ना चाहते हैं।
बिल्कुल, कुछ जगह उसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा रहा
है, मुझे मालूम नहीं क्योंकि उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन क्या वो चाहते हैं कि टू पार्टी सिस्टम हो? आज के संदर्भ में कोई भी पार्टी का 6% वोट होता है, 4 स्टेट में उसकी मौजूदगी है, तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है जो कि चुनाव में लड़ सकती है नेशनल पार्टी के रूप में। क्या आप चाहेंगे इसका दायरा बढ़ा करके गिनी चुनी 2-4 पार्टियों को रहने दिया जाए, बाकी को बाहर करो? पर क्योंकि हमारा देश इतना डाइवर्स है इसलिए ही ये बहुत जरूरी हो जाता है। आज आपकी राजभर पार्टी है क्योंकि राजभर एक कम्युनिटी है जिनकी आवाज और उनकी जरूरतों को वो पार्टी बुलंद करती है। अपना दल एक पार्टी है जो कि कुर्मियों की आवाज को बुलंद करती है। तो पूरा देश साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इन सब में पार्टियां हैं जो कि एक पार्टी दो पार्टी उनकी जरूरतों को उनकी एस्पिरेशंस को नहीं आवाज दे पाई हैं, इसीलिए पार्टीज बनी हैं। तो अगर एक मेजर पार्टी बन गई या दो मेजर पार्टीज बन गई तो ये छोटी कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज, कोस्टल एरियाज, इनकी जो जरूरतें हैं उनको सामने ला पाएगी कि नहीं? मुझे पता नहीं क्या अमित शाह के मन में है, लेकिन आई वुड बी वेरी कंसर्न।
और इसमें कई बातें हैं नीचे, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दूसरी चीज है एक रिपब्लिक है, और उसके बाद साथ में आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, और खुद जब एक गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या ये बोलना उचित है, क्या ये समझा जाना चाहिए कि आप पूरी संविधान में बदलाव कर देंगे, एक नए तरीके की व्यवस्था लाएंगे?
उसमें तो वो कह सकते हैं कि मैंने पहला जुमला कहा उस पे होने दीजिए डिबेट, कि मैंने शुरुआत ही की है इस पे बहस हो जाए तो। पर आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स का ये उनकी मंशा होना काफी नहीं है। ये जो है कि हम फेडरल पॉलिटिक्स हैं, इतने स्टेट्स हैं, उसके बिना अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की गई, पता नहीं और पार्टीज रिएक्ट कैसे करेंगे। जैसे एक वन नेशन वन लैंग्वेज को लेके काफी रिएक्शन हुआ है, साउथ में तो होना ही था।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। अमेरिका के कई सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से मांग की है कि भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी GSP व्यापार स्कीम की सूची में फिर से शामिल किया जाए। GSP स्कीम के तहत भारत को शुल्क में दी जाने वाली रियायत जून महीने में खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद से कुछ भारतीय उत्पादों पर अमरीका में शुल्क में 10% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी कांग्रेस के 44 सदस्यों ने ट्रंप प्रशासन के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि भारत को वापस GSP व्यापार स्कीम में शामिल किया जाए। इनमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसद शामिल हैं। इन सांसदों का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत को GSP या जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर किए जाने के बाद से भारत द्वारा कुछ अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए शुल्क से अमेरिकी उद्योग को भी नुकसान हो रहा है। इस साल जून की 5 तारीख को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस या GSP व्यापार स्कीम के तहत अमेरिका ने 3-11% तक का शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। इससे पहले करीब $6 अरब के इन भारतीय उत्पादों को GSP के तहत अमेरिका में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति थी। GSP के खत्म होने के बाद से जिन भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाया जा रहा है उनमें ऑटो पार्ट्स, खाद्य सामग्री, जेवरात और चमड़े की बनी वस्तुएं शामिल हैं। याद रहे अमरीकी फैसले के बाद भारत ने 28 अमरीकी उत्पादों जैसे अखरोट, बादाम, सेब आदि पर ऊंचे दर पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया था। भारत ने अमरीका से 2018 में करीब $55 करोड़ के बादाम खरीदे थे और करीब $15 करोड़ के अमरीकी सेब भी खरीदे थे। अमरीकी सांसदों ने पत्र में लिखा है कि भारत में बाजार तक कुछ अमरीकी उत्पादों को पहुंच न मिलने से तो नुकसान होता ही है। अमरीकी कंपनियों और कर्मचारियों को जीएसपी से भारत को बाहर करने के बाद लगाए गए नए शुल्क से भी नुकसान हो रहा है। पत्र में सांसदों ने कहा है कि बहुत सी अमरीकी नौकरियां भारत और अमरीका के बीच व्यापार पर निर्भर करती हैं। दोनों देशों ने व्यापार के मुद्दों पर कई दौर की बातचीत भी की है, लेकिन जीएसपी का फैसला अभी तक नहीं बदला गया है, न ही तो भारत द्वारा अमरीकी उत्पादों पर नए शुल्क ही कम किए गए हैं। इसके अलावा अमरीका को वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी अमरीकी कंपनियों के भारत में ऑनलाइन कारोबार करने पर भी कुछ पाबंदियों पर परेशानी है। अमरीका द्वारा फिलहाल भारतीय उत्पादों पर $200 मिलियन तक का शुल्क लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि भारत और अमरीका के बीच जहां $90 अरब के उत्पादों का व्यापार होता है, उसमें जीएसपी एक छोटा सा हिस्सा भर है। अमरीकी सांसदों का दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर ये पत्र ऐसे समय में लिखा गया है कि जब 22 सितंबर को टेक्सास की ह्यूस्टन शहर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होनी है, जिसमें व्यापार पर भी बातचीत की उम्मीद है। मोदी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम के कार्यक्रम में ट्रंप के साथ शामिल हो रहे हैं, जिसमें 50,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
ये बीबीसी हिंदी सेवा का एक घंटे का दिनभर कार्यक्रम है और अब सुनिए भूमिका राय से विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि अयोध्या विवाद की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद में जमीन के मालिकाना हक पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। संवैधानिक बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस सुनवाई के साथ साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया भी चलती रह सकती है और अगर इससे समझौता हो जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं और इससे पहले उन्हें फैसला देने की उम्मीद जताई है। उन्होंने इस मसले पर शुरुआत से सारी दलीलें सुनी हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि तब तक कुछ न कुछ फैसला आ जाएगा। इसराइल में मंगलवार को हुए आम चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स में मौजूदा प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। करीब 90% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। लाइबेरिया के कोरेनिक स्कूल में आग लगने से कम 27 बच्चों की मौत हो गई है। राजधानी मोनरोविया के उपनगर पेनेसविले के एक मस्जिद से लगे बोर्डिंग में रात के वक्त एक भीषण धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि सिर्फ 2 बच्चे और उनके शिक्षक ही इस भीषण आग से बचकर भाग सके। राष्ट्रपति जॉर्ज वे ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि ये पीड़ित परिवारों के लिए बेहद दुख की घड़ी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने यूरोपीय संसद में कहा है कि ब्रेग्जिट को लेकर हुई वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लंदन ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ कभी नहीं चाहता है कि बिना समझौते वाला ब्रेग्जिट हो। यूरोपीय संघ की ओर से वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने कहा कि अगर ऐसा होता भी है तो सभी विवादास्पद मुद्दे बने रहेंगे और जब तक ब्रिटेन यूरोपीय संघ का नया व्यापार समझौता नहीं कर लेता, हर मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। ब्रिटेन में सऊदी अरब के नए राजदूत ने कहा है कि शनिवार को उसके तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के खिलाफ जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बीबीसी से बात करते हुए प्रिंस खालिद बिन बांदर अल सऊद ने कहा कि ये हमला पूरी दुनिया और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है और इसमें ईरान का हाथ है, इस पर उन्हें कोई शक नहीं है। अमरीकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन से आग्रह किया है कि वे भारत को दी जाने वाली व्यापारिक रियायतों को दोबारा बहाल कर दें। बीबीसी समाचार।
भारत में समय हो रहा है 8:03 और आप सुन रहे हैं एक घंटे का विशेष दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। श्रोताओं, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की खबरों को हम आप तक ठीक से पहुंचा पाएं, इसलिए हमने फिलहाल अपने शाम के कार्यक्रम दिनभर को एक घंटे का कर दिया है। कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम आपको सुनवाएंगे कि क्या इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है, अफगानिस्तान शांति वार्ता रद्द किए जाने के क्या मायने हैं, विस्तार से सुनिएगा दुनिया जहान में, और सोशल मीडिया पर आज क्या छाया रहा ये भी बताएंगे। फिर खेल की खबरें तो होंगी ही, जिन्हें लेकर आएंगी सूर्यांशी पांडे। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। खबर है इसराइल से, जहां सरकार गठन को लेकर फिर गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है। मंगलवार को हुए आम चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं और इन एग्जिट पोल्स में मौजूदा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी बेनी गेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। इसराइली टीवी चैनल पर प्रसारित 3 अलग अलग एग्जिट पोल्स के मुताबिक किसी की भी सरकार बनती नहीं दिख रही है। इसराइल में बुधवार सवेरे तक शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए कवायद तेज हो जाएगी। ब्यौरा सुनिए गुरप्रीत कौर से।
देखो देखो कौन आया, इसराइल का अगला प्रधानमंत्री आया। इसराइली टीवी के एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स के समर्थक उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के उम्मीदवार गेंट्स ने तेल अवीव में अपने पार्टी दफ्तर में समर्थकों को संबोधित करते हुए अपना मिशन पूरा होने का ऐलान किया।
मैं आज बहुत खुश हूं। हम बिल्कुल असल चुनावी नतीजों का इंतजार करेंगे, पर ऐसा लगता है कि हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ऐसा अपने तरीके से किया है।
ये थे बेनी गेंट्स के शब्द। बेनी गेंट्स इसे अपने लिए सकारात्मकता से पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर असल परिणाम एग्जिट पोल जैसे ही रहे तो नई सरकार बनने से पहले गठबंधन के लिए समीकरण बैठाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक इसराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके समर्थक उन्हें राजा और जादूगर कहते हैं, लेकिन उनका जादू उतरता सा लग रहा है। उनकी स्थिति अप्रैल के चुनावों के मुकाबले और कमजोर हो गई है। पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन गठबंधन में किंग मेकर बन सकते हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू कट्टरपंथी पार्टियों पर बहुत भरोसा करते हैं और अगली सरकार नेतन्याहू के बिना बन सकती है। नेतन्याहू ने एक मजबूत सरकार की अपील करते हुए विपक्षियों पर आरोप भी लगाए हैं।
इस्राएल स्कुका लिमेम्शला खजका, मेम्शला या सीवा।
इसराइल को एक मजबूत, स्थिर और एक यहूदीवादी सरकार की जरूरत है जो इसराइल राष्ट्र और यहूदी लोगों के लिए प्रतिबद्ध हो। यहाँ अरब के लोगों के समर्थन वाली यहूदी विरोधी सरकार नहीं हो सकती।
चुनाव अभियान के दौरान नेतन्याहू ने राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी वोटरों को लुभाने के लिए एक दाव भी चला था और घोषणा की थी कि अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करते हैं तो वो वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों पर अपना अधिकार जमाएंगे। इस जमीन पर फलिस्तीनी अपना हक जमाते हैं और उन्होंने नेतन्याहू की योजना को युद्ध अपराध बताया है। नेतन्याहू की मुख्य चुनौती बेनी गेंट्स हैं। इस पूर्व जनरल ने चुनाव अभियान के दौरान नेतन्याहू की भ्रष्टाचार के आरोपों पर घेराबंदी की, हालांकि नेतन्याहू इन आरोपों से इनकार करते हैं। इसराइल में राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ेगी और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि ये नेतन्याहू का युग खत्म होने की शुरुआत हो सकता है। हालांकि असल नतीजे आने तक नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के दफ्तर में भी नारे लगाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं।
ब्यौरा सुना रही थी गुरप्रीत कौर। इसराइल का इतिहास रहा है कि 120 सदस्यीय संसद में कभी किसी दल को बहुमत नहीं मिला। इसी साल अप्रैल में हुए आम चुनाव में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी ने 120 में से सिर्फ 35 सीटें जीती थी। 18 साल से संघर्ष का सामना कर रहे अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद जगी थी जब अमरीका और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही थी। उन मुलाकातों में विदेशी फौज की वापसी और अफगानिस्तान में अमन कायम करना एजेंडे में प्रमुख था, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत अचानक रोकने के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर नए संकट की कगार पर है। बीबीसी ने तालिबान के नियंत्रण वाले उत्तरी अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत में उन आम नागरिकों से बात की जो जोखिम भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता औलिया अतराफी की ये खास रिपोर्ट अमरेश द्विवेदी से।
गहरे सदमे में बिलखती रोजी अपने पोते पोतियों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अपने बच्चों के जूतों को हाथ में लेकर विलाप करती वो यही कह रही हैं कि काश बच्चों की जगह उनकी जान चली जाती। तालिबान और सरकार की लड़ाई में फंसा रोजी का गांव नो मैंस लैंड में पड़ता है जहां रात में अफगान सेना का हवाई हमला हुआ था। उस हमले में उन्होंने अपने परिवार के 6 सदस्यों को खो दिया, 2 बेटे, 1 बहू और 3 पोते पोती। सबसे छोटा बच्चा 1 साल का था।
वो
वो मुझे घर के भीतर ले गईं और बताया कि उनके पास बस यही चीजें बची हैं। धूल से भरा कुछ सामान, कुछ प्लेटें और थोड़ा अनाज जो ठंड तक ही चल पाएगा। जिंदगी के लिए ये काफी नहीं।
मेरे बच्चों के ऊपर धूल पड़ी थी, उनकी जान निकल चुकी थी, उनकी आंखों और मुंह में धूल ही धूल थी। मैंने उसे पोछा और रोई, फिर पोछा और रोती रही।
अमेरिका और तालिबान की लड़ाई शुरू होने के बाद से हर साल मरने वाले आम नागरिकों की संख्या बढ़ती गई है। अब शांति वार्ता के टूटने के बाद हाशिए पर खड़े लोगों के लिए जिंदगी और अनिश्चित हो गई है। हवाई हमले में कुल 12 लोगों की मौत हुई। गांव के ज्यादातर लोग हिंसा को देखते हुए पलायन कर चुके हैं। जिन लोगों ने यहां रुकने का रास्ता चुना, उनके लिए ऐसा नजारा रोजमर्रा की बात बन गई है। सरकार का कहना है कि वो गांव से गोलियां चला रहे तालिबान चरमपंथियों को निशाना बना रही थी, लेकिन यहां मौजूद कई लोग चाहते हैं कि जिनकी जान गई है उन्हें न्याय मिले। बेटों के बिना रोजी को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है और ऐसे दूर दराज इलाके में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली ठंड बस कट जाए।
बीबीसी संवाददाता औलिया त्राफी की रिपोर्ट अमरेश द्विवेदी से सुन रहे थे आप। बीबीसी की एक पड़ताल में पता चला है कि पिछले महीने अफगानिस्तान में हर रोज औसतन 74 लोगों की मौत हुई। ये सब उस समय हुआ जब तालिबान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही थी। अमेरिका और तालिबान लंबे समय से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौते के करीब भी पहुंच गए थे, मगर दस्तखत होने से ठीक पहले अमरीका ने तालिबान की ओर से किए जा रहे हमलों पर नाराजगी जताते हुए समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद तालिबान प्रतिनिधियों ने रूस का रुख कर लिया। क्या कारण रहे कि अमेरिका के ऐन वक्त पर पीछे हट गया? क्या इससे अफगानिस्तान में शांति स्थापित होने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं? हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने दुनिया जहान में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की।
दुनिया जहां। अफगानिस्तान पहाड़ों से भरा बेहद खूबसूरत देश, जो आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण मानव जनित त्रासदी झेल रहा है। अफगानिस्तान 4 दशकों से अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष का सामना कर रहा है, जिसने उसके बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में अफगान नागरिक विस्थापित हुए हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। एक समय अफगानिस्तान की सत्ता पर रहे तालिबान लगातार अफगान सरकार, सुरक्षा बलों और नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच दोहा में कई दौर की बातचीत के बाद एक समझौते पर सहमति बनती दिख रही थी, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐन वक्त पर इस वार्ता से पीछे हट गए। कारण बताया काबुल में हुआ वो धमाका जिसमें एक अमरीकी सैनिक समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी।
They thought that they had to kill people in order to put themselves in a little better negotiating position.
उन्हें लगा कि वो लोगों को मारकर सौदेबाजी करने की बेहतर स्थिति में होंगे। उन्होंने 12 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें एक अमरीकी सैनिक भी था जिसका परिवार पुएर्टो रिको में रहता है। मेरे साथ ये सब नहीं चल सकता। हमने 4 दिनों में तालिबान पर इतना जोरदार हमला किया है जो पिछले 10 साल में नहीं किया गया।
लेकिन सवाल ये उठता है कि वार्ता के दौरान भी तालिबान लगातार हमले कर रहा था और पिछले 1 साल में अफगानिस्तान में और भी अमरीकी सैनिकों की मौत हुई थी। फिर समझौते से पीछे हटने की वजह क्या वाकई वही है जो ट्रंप बता रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कुछ और कारण भी बताते हैं।
टाइमिंग नहीं रियलाइज की, रियलाइज किया कि सितंबर 11 जिस दिन अमेरिका पे इतना बड़ा हमला हुआ था अफगानिस्तान से 2001 में, उस दिन तालिबान को अमेरिका लाना एक पब्लिसिटी डिजास्टर हो सकता था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन तालिबान का जो ऑब्लिगेशन था वो ये था कि वो फॉरेन फाइटर्स को अफगानिस्तान में आने से रोक देंगे और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे अफगानिस्तान में दूसरी जगहों पर टेररिज्म करने के लिए। तो ये अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमको भरोसा नहीं है कि तालिबान कैन डिलीवर कि वो आईसिस को खत्म कर देगा अफगानिस्तान के अंदर।
1979 में अफगानिस्तान में घुसने वाली सोवियत सेनाएं जब साल 1989 में यहां से हटी, तो अमरीका और पाकिस्तान समर्थित मुजाहिदों ने सोवियत संघ के बिठाए शासक नजीबुल्लाह को हटाने की कोशिशें शुरू कर दी। इससे अफगानिस्तान में भीषण गृह युद्ध का दौर शुरू हो गया। इस अराजकता का फायदा मिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर उभरे संगठन तालिबान को। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र। मजहबी तालीम देने से शुरुआत करने वाले तालिबान ने 1996 में काबुल पर नियंत्रण हासिल कर लिया और फिर अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी कानून लागू कर दिए। इस बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हाईजैक किए गए यात्री विमानों से हमले किए गए जिनमें 3000 लोग मारे गए। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार बताया और तालिबान से मांग की कि अफगानिस्तान में मौजूद ओसामा बिन लादेन को सौंप दे। जब तालिबान ने इनकार किया तो अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान पर हमले का ऐलान कर दिया। अमरीका उसके अंतर्राष्ट्रीय और अफगान सहयोगियों के हमले को तालिबान सह नहीं पाया और 2 महीने के अंदर ही उसे सत्ता से हटना पड़ा। अब अफगानिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा नेटो सेनाओं ने संभाल लिया। 2004 में अफगानिस्तान में नया संविधान बना और फिर अंतरिम राष्ट्रपति रहे हामिद करजई चुनाव के बाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन इस बीच तालिबान और अमेरिका की सहयोगी सेनाओं के बीच जंग चलती रही। 10 साल तक धमाकों, हमलों और एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार साल 2014 में नेटो ने औपचारिक रूप से अफगानिस्तान में अपने अभियान का अंत किया और सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगान बलों के हवाले कर दी। उस समय अमरीका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने कहा था,
Today, all our troops are out of Iraq. More than 60,000 of our troops have already come home from Afghanistan.
आज हमारे सैनिक इराक से आ गए हैं। 60,000 से ज्यादा अफगानिस्तान से अपने घर लौट चुके हैं। अफगान सुरक्षा बल अपनी सुरक्षा खुद संभाल रहे हैं। हमारे सैनिक उनकी मदद कर रहे हैं। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हम अपना मिशन खत्म कर देंगे और युद्ध का अंत हो जाएगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अराजकता बढ़ने लगी और धीरे धीरे तालिबान फिर से और इलाकों पर कब्जा करते गए। बीते साल बीबीसी ने पाया था कि तालिबान 70% अफगानिस्तान में खुलकर सक्रिय थे। लेकिन पिछले ही साल अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए वार्ता शुरू कर दी थी। 1 साल तक सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था, फिर ये वार्ता एकाएक खत्म हो गई। अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़े मामलों की गहरी समझ रखने वाले पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई बताते हैं कि अमरीकी सरकार के अंगों के बीच ही इस मामले पर विरोधाभास बना हुआ था।
वहाँ जो मुख्तलिफ सरकार के इदारे हैं यानी पेंटागन, CIA, वहाँ पे शायद कुछ मुखालफत है। और अफगानिस्तान में जो साबिक मिलिट्री कमांडर रहे अमेरिका के या सफीर रहे, उन्होंने भी मुखालफत की थी। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी ये कि अमेरिका को जो उसके मकासद थे 15 महीने के डायलॉग में, शायद वो हासिल नहीं हो सके। उन्होंने कोशिश की लेकिन तालिबान नहीं माने, और ये अमेरिका के लिए काफी एक कमजोरी थी कि उन्होंने तालिबान का मुतालबा मान लिया, उनसे बराह रास्त मुजाकरात किए और अफगान सरकार को उसमें नहीं बुलाया।
अफगानिस्तान में इस समय 14,000 अमरीकी सैनिक हैं और लगभग इतनी ही संख्या उसके सहयोगी देशों के सैनिकों की है। तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान से विदेशी सैनिक पूरी तरह हटने चाहिए, मगर अमरीका इसके लिए तैयार नहीं। प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि समझौते के आखिरी दौर में 4 शर्तें थी जिन्हें लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही गतिरोध बना हुआ था।
एक, कि अमरीका और नेटो अपनी पूरी ट्रूप्स विड्रॉ कर लेंगे अफगानिस्तान से, तो कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि तालिबान जो है सो ISIS के खिलाफ गारंटी देगी अमेरिका को। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका के विड्रॉ होते ही तालिबान जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ वो डायलॉग शुरू करेगा। तो ये जो तीसरी कंडीशन थी डायलॉग की, तो उस पे लोगों की क्रिटिसिज्म ये थी कि ये डायलॉग में अफगानिस्तान को की गवर्नमेंट को ऑलरेडी प्ले करना चाहिए था, लेकिन ये प्री कंडीशन तालिबान ने लगाया हुआ था कि हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से नेगोशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे। और जो चौथी चीज जो थी कि अमेरिका चाह रहा था कि वो एक छोटा सा काउंटर टेररिज्म यूनिट या 3-4 हजार 5-6 हजार ऐसे स्पेशल फोर्सेज अफगानिस्तान में वो मेंटेन करना चाह रहा था जो खाली काउंटर टेररिज्म की वजह से।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुख्तदर खान का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों का मौजूद रहना और वहां उसका सैन्य ठिकाना होना अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के साथ ये जो हालात जो खराब हो रहे हैं, अगर ये इसी सीट में रहते हैं तो फिर अमेरिका में जो ईरान हॉक्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ हो, क्योंकि उनके पास अब डबल ट्रिपल एडवांटेज हो जाता है, समंदर से भी हमला कर सकते हैं, जमीन से भी कर सकते हैं, मतलब मेजर ट्रूप्स वहाँ पहले अफगानिस्तान में लैंड करके, तो जो रोल कतर ने अदा किया था इराक वॉर में वो रोल अफगानिस्तान अदा कर सकता है ईरान से अगर जंग होती है।
उधर अमेरिका के साथ वार्ता असफल होते ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान में 28 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं और तालिबान कह चुके हैं कि वो इनमें बाधा डालेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई कहते हैं कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में चल रहा संघर्ष और तेज हो सकता है।
इसका मतलब ये है कि फिर जंग में इजाफा होगा। खुद ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो कह चुके हैं कि उन्होंने हालिया दिनों में बड़े बड़े हमले किए, एयर स्ट्राइक किए और तालिबान को शदीद नुकसान पहुंचाया। तालिबान तो उसको नहीं मान रहे, लेकिन ये जब अमरीकी हमले करेंगे, अफगान सरकार भी हमले करेगी, तालिबान भी हमले करेंगे तो ज्यादा खून बहेगा और फिर ऐसे हालात साजगार नहीं होंगे बातचीत के लिए।
इधर अमेरिका और तालिबान की वार्ता बेनतीजा खत्म हुई तो उधर तालिबान प्रतिनिधियों ने रूस का रुख कर लिया। तालिबान के प्रतिनिधियों ने मॉस्को जाकर अफगानिस्तान के लिए रूस के विशेष दूत जामिर कबलोव के साथ मुलाकात की। क्या वजह है जो रूस अफगानिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुख्तदर खान कहते हैं कि इसके पीछे तालिबान की एक रणनीति है।
खास तौर से मुस्लिम कंट्रीज, जब भी अमेरिका उनको ना कहता है वो रशिया की तरफ दौड़ते हैं। इस पर सबसे बड़ी मिसाल तो अब तुर्की बन गई है। तुर्की जब से अमेरिका के ताल्लुकात तुर्की के साथ थोड़े से खराब हुए हैं तो तुर्की अब रशिया से हथियार खरीदने लग गया है, रशिया के खरीद जा रहा है। तो ये एक टैक्टिक यूज कर रहे हैं छोटे ममालिक, कमजोर ममालिक, जो कोल्ड वॉर में इस्तेमाल की जाती थी सोवियत यूनियन और अमरीका के बीच में। अब वो कह रहे हैं कि भाई यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन टाउन, अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करता तो हम रशिया के पास चले जाएंगे। और लेकिन जब तालिबान और रशिया के बीच में डायलॉग हुआ है, बस उसमें सिर्फ रशिया का यही बयान था कि ये टॉक्स फिर से दोबारा शुरू होने चाहिए। तो इस तरह से यूँ कहिए कि तालिबान की थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रोफाइल बढ़ गई है, बट मुझे नहीं लगता कि अमेरिका रशिया को कोई ऐसा मेजर रोल प्ले करने का मौका देगा अफगानिस्तान।
रूस और अमेरिका ही अकेले देश नहीं हैं जो अफगानिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं। भारत और पाकिस्तान के भी वहां हित हैं। ईरान, चीन, सऊदी अरब और तुर्की का भी किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान में दखल है। क्या इन्हें भी शांति प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए? प्रोफेसर मुख्तदर खान इसे अव्यवहारिक मानते हैं क्योंकि सभी देशों के हित अलग अलग हैं। वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई कहते हैं कि अफगानिस्तान में अगर शांति स्थापित करनी है तो अमरीका और तालिबान के साथ साथ अन्य पक्षों को भी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी और शांति वार्ता को प्रोत्साहित करना होगा।
यहाँ का जो सलूशन है वो आसान तो नहीं है, बड़ा पुराना और पेचीदा मामला है, लेकिन पहली बात तो ये है कि अमन के लिए मुजाकरात होने चाहिए। तीन बड़े फरीक हैं, अफगान सरकार, तालिबान और अमेरिका। फिर इसके अलावा जो चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, टर्की भी है, तो इनको फिर ये है कि सपोर्ट करना चाहिए इस पीस प्रोसेस को। ये सब का कुछ ना कुछ असर है, किसी की मुदाखलत है। और फिर मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान में बेतहाशा वेपन्स हैं बेशुमार, इसको किस तरीके से कम करना पड़ेगा। ड्रग्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो वो तो ज़ाहिर है जब तक एक मजबूत सरकार नहीं आएगी अफगानिस्तान में तो वो तो ये मसला हल नहीं कर सकती। लेकिन मेरे ख्याल में ये बाहर से जो मुदाखलत है, इंटरफेरेंस, इसको रोकना चाहिए। اور اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ بات چیت جاری رہے گی, اس کو روکنا نہیں ہے, چاہے کوئی حملہ ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, تو پھر شاید بات آگے بڑھ سکے.
افغان طالبان کی مکھیہ وارتاکار نے ایک بار پھر امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کو بات چیت کا نیوتا دیا ہے تاکہ افغانستان میں چل رہی جنگ کا خاتمہ ہو سکے. جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بات چیت پھر شروع ہو سکتی ہے, مگر سوال وہی ہے کہ کیا وہ وارتا سفل رہے گی. افغانستان میں اتنے سالوں سے چلی آ رہی جنگ بتاتی ہے کہ ہنسا کے راستے تو وہاں شانتی آ نہیں سکتی. شانتی کا ایک ہی راستہ ہے, بات چیت کر کے آپس میں سہمتی بنانا. جانکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کی وارتا ٹوٹی ہی اس لیے کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دونوں پہلے ایسے قدم اٹھائیں کہ ایک دوسرے کا بھروسہ جیت سکے. آدرش راٹھور, بی بی سی دلی.
اور کھیل کی دنیا میں کیا چل رہا ہے بتانے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے سامنے بیٹھی ہیں سوریانشی پانڈے. لیکن اس سے پہلے ایک خبر قزاقستان سے. بھارتی مہیلا پہلوان ونیش پھوگاٹ نے وشو کشتی چیمپئن شپ 2019 میں بھارت کے پدک کے سوکھے کا انت کر دیا ہے. بدھوار کو 2020 ٹوکیو اولمپک کے لیے کوالیفائی کرتے ہوئے بھارتی مہیلا پہلوان نے نور سلطان قزاقستان میں کھیلی جا رہی چیمپئن شپ میں کانسے پدک جیت لیا ہے. انہوں نے 53 کلو گرام بھار ورگ فری اسٹائل میں یہ پدک جیتا ہے. پدک جیتنے کے بعد انہوں نے کیا کہا سنیے.
دیکھیے کیونکہ میرا پہلا ورلڈ چیمپئن شپ اور ورلڈ میں میڈل لینا بہت ہی بڑی بات ہے, اور میں نے ویٹ کٹ اتنی شفٹ کیا ہے, اور پہلی بار مطلب 10 مہینے میں ہی یہ میڈل ملنا میرے لیے کافی خوشی کی بات. میرے لیے آج تک کا سب سے بڑا میڈل ہے یہ.
پدک جیت کر گد گد ونیش پھوگاٹ. سوریانشی آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کھیل کی دنیا؟
آج کشتی میں تو اچھی خبر ہے بھارت کے لیے, لیکن یہاں پر بھی اچھی خبر ہو سکتی ہے. میں سمجھ رہے ہوں گے اشارہ کس طرف ہے, کرکٹ کی طرف اشارہ ہے. اور آج مقابلہ بھارت اور دکشن افریقہ کا ہے, اور یہ موہالی میں مقابلہ کھیلا جا رہا ہے. ابھی جو سکور ہے وہ دکشن افریقہ بلے بازی کر رہی ہے اور 129 رن انہوں نے بنائے ہیں 4 وکٹ کے نقصان پر, اور 18واں اوور چل رہا ہے. اور اگر شروع سے شروع کریں تو پہلا ٹاس جو ہے وہ بھارت نے جیتا تھا, اور انہوں نے کی تھی گیند بازی کرنے کا فیصلہ, جو کہ بہت اچھا فیصلہ تھا کیونکہ یہاں پر ڈیو کا فیکٹر جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر. اور اگر ہم بات کریں دکشن افریقہ کی, تو بیٹنگ میں اوپننگ کرنے آئے تھے ریزا ہینڈرکس اور کوئنٹن ڈی کاک, لیکن ریزا ہینڈرک کو چلتا کر دیا دیپک چہر کی گیند نے. واشنگٹن سندر نے انہیں گیند کو کیچ کیا اور 6 رن پر ریزا ہینڈرکس آؤٹ ہو گئے. 11 گیندیں وہ کھیل پائے تھے. اس کے بعد کوئنٹن ڈی کاک سے بہت زیادہ امید تھی, اور انہوں نے امید پر کافی اچھا پرفارمنس بھی دیا, امید پر کھڑے اترے وہ, اور 37 گیندوں پر 52 رن انہوں نے بنائے, لیکن کوہلی کا کیچ اور نوبدیپ سین کی گیند سے وہ آؤٹ ہو گئے.
بہت شکریہ کھیل سماچاروں کے لیے سوریانشی پانڈے. اور اب وقت ہے سوشل میڈیا راؤنڈ اپ کا.
دیکھیے آج اگر ہم چرچا کی بات کریں تو سب سے زیادہ چرچت ایک تصویر رہی, کون سی تصویر تھی اس کے بارے میں بتاؤں گی. اس کے علاوہ اگر شبدوں کی بات کریں تو ای سگریٹ سب سے زیادہ وہ چرچا میں رہا, اور ایک بیان ہندی کا وہ بھی بہت چرچا میں رہا. لیکن سب کے بارے میں وستار سے دھیرے دھیرے بتاؤں گی. سب سے پہلے ای سگریٹ پہ آتے ہیں. ای سگریٹ اس لیے چرچا میں رہا کیونکہ نرملا سیتارمن نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اور جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ای سگریٹ کو بین کرنے کے لیے یونین کیبنٹ سے منظوری مل گئی ہے. اب اس پر کوشل ویاس ٹویٹر پر وہ لکھتے ہیں کہ ای سگریٹ سگریٹ سے بہتر ہوتی ہے, اس لیے چرچا میں رہی کہ کون سی سگریٹ بہتر ہے کون سی نہیں ہے. ان سب پر بہت زیادہ
کسی نے یہ بھی ضرور لکھا ہوگا کہ سگریٹ پر پرتیبندھ نہیں لگایا لیکن ای سگریٹ پہ لگا دیا ہے.
واہ, اب تو انتریامی نکلے. بالکل, ایک یوزر نے لکھا ہے یہ, اگر ای سگریٹ بین کی جا سکتی ہے تو نارمل سگریٹ کیوں نہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی سپریم کورٹ سے مینوئل اسکیونجنگ یعنی کہ میلا ڈھونے کی پرتھا کو لے کر. اس نے کہا, اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا, سرکار سے کہا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی دیش اپنے لوگوں کو گیس چیمبر میں مرنے کے لیے نہیں بھیجتا. ہر مہینے 4 سے 5 لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں اس پرتھا کے چلتے.
اس کے علاوہ اور کیا چرچا میں رہا؟
اسی پر رنجیت مشرا ٹویٹر پر لکھتے ہیں, میلا ڈھونے کی پرتھا کو روکنے کے لیے بات خوب ہوتی ہے لیکن اسے روکنا بھارت کی پہلی پراتھمکتا ہونی چاہیے, انسانیت دکھانے کی ضرورت ہے.
سوشل میڈیا پر کیا چرچا میں رہا بتا رہی تھیں سروج سنگھ. کارکرم کی سماپتی سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر بھومیکا رائے سے.
بی بی سی سماچار. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि अयोध्या विवाद की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसराइल में मंगलवार को हुए आम चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं। करीब 90% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। लाइबेरिया के कोरानिक स्कूल में आग लगने से कम 27 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि सिर्फ 2 बच्चे और उनके शिक्षक ही इस भीषण आग से बचकर भाग सके। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने यूरोपीय संसद में कहा है कि ब्रेग्जिट को लेकर हुई वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लंदन ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन से आग्रह किया है कि वे भारत को दी जाने वाली व्यापारिक रियायतें दोबारा बहाल कर दें। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह नमस्कार भारत में होगी। समय आप जानते हैं 6:30 बजे। इस कार्यक्रम का संपादन किया मोहनलाल शर्मा ने और तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।